الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ रहे हैं मारफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से, और इस आयत यानी आयत नंबर 24 जो अभी तलावत की गई उसकी तफसीर चल रही है. मारिफ मसाइल पढ़ रहे हैं पेज नंबर 49 के ऊपर थे. तो मसला ये चल रहा है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलैखा ने गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश करी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, और बज़ाहिर कुरान मजीद के अल्फाज से क्या जाहिर होता है लेकिन उसकी हकीकत क्या है. अल्फाज से बज़ाहिर यानी सुपरफिशियली अगर देखा जाए तो ऐसा जाहिर होता है कि जुलैखा ने भी गुनाह की नीयत कर ली थी और नाउज़ बिल्ला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी गुनाह की नीयत कर ली थी. लकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा, ठीक है, बीच में एक वक्त जो है वो लाजम है, जीम लगा हुआ है. तो कारी साहब ने भी बताया था पिछली क्लास में कि वक्फ लाजम है ताकि इन दोनों में जुदाई जो है ना, इन दोनों में फर्क जो है वो इवन किरात के अंदर भी वाजह हो सके. ठीक है, तो हमने ये आखिरी बात पढ़ी थी कि क्या मालूम हुआ पेज नंबर 49 के शुरू में कि अगरचे आयत में लफ्ज हम्मा जुलैखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों के लिए बोला गया है मगर इन दोनों के हम यानी ख्याल में बड़ा बड़ा फर्क है. ठीक है, मीम के ऊपर जब तशदीद हो तो उसको इस तरीके से हम इस तरह से पढ़ेंगे. पहले गुनाह में दाखिल है और दूसरा गैर इख्तियारी वसवसे की हैसियत रखता है जो गुनाह में दाखिल नहीं है. गैर इख्तियारी वसवसा जो हर इंसान को आता है, जो ज्यादा बुरे माहौल में रहते हैं उनको ज्यादा आता है और जो अच्छे माहौल में रहते हैं उनको कम आता है. ठीक है, गैर इख्तियारी वसवसों की जो मिसाल है ना वो हमारे मशायख खुसूसन हमारे हजरत जो है वो ऐसे बयान करते हैं कि जैसे एक 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 ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल. ठीक है, तो उस ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो है ना वो हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, राइट से भी आती है, लेफ्ट से भी आती है, आगे से भी आती है, पीछे से भी आती है. ठीक है, तो हमारा दिमाग जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल की मानिंद है और उसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होती है ना वो इन गैर इख्तियारी वसवसों की मानिंद होती है. ठीक है, दिमाग जो है ये थॉट प्रोसेसर है हमारे जिस्म के अंदर, थॉट प्रोसेसर. तो भाई थॉट्स जो है ना यानी ख्यालात जो है वो तो आएंगे, उन्होंने तो आना है. ठीक है, हमारे दिमाग का काम ये होता है कि जी उनको चलता करो, ट्रैफिक को ब्लॉक ना होने दो, ट्रैफिक को क्लॉग ना होने दो. जैसे कि हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल कभी खड़ा होता है, मतलब हमारे यहाँ क्या हर जगह ही कभी कभी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल भी खड़े होते हैं, कभी जो है ट्रैफिक लाइट लगी हुई होती है. ठीक है, सिग्नल लाइट, तो सिग्नल लाइट इस तरह से ऑपरेट करती है कि ट्रैफिक इधर से आ रही है तो उसको इधर जाने दे, बाकियों को रोक दे, फिर इधर से आने वाली को आगे जाने दे. ठीक है, अगर ये ट्रैफिक लाइट काम करना छोड़ दे या ट्रैफिक कांस्टेबल पुलिस वाला काम करना छोड़ दे तो फिर इधर से आने वाला उधर को ब्लॉक करेगा, उधर से आने वाला इधर को ब्लॉक करेगा और मामला जो है वो खराब हो जाएगा. तो ब्रेन जो है ना वो ये ट्रैफिक ट्रैफिक कांस्टेबल का काम करता है या इसको करना चाहिए. ठीक है, आने वाले ख्यालात को चलता करो, लेके मत बैठ जाओ, बुरे ख्यालात को लेके मत बैठ जाओ. ठीक है, अच्छे ख्यालात को भी लेके मत बैठ जाओ बल्कि उनके ऊपर अमल करो, बैठ नहीं जाओ लेकर के उनको बल्कि उनके ऊपर अमल करो, बुरे ख्यालात को तो निकालो बिल्कुल. ठीक है, अच्छा अब जो है वो ये जो ट्रैफिक क्रॉसिंग है, ये ट्रैफिक क्रॉसिंग भी कई तरह की हो सकती है ना, जिनमें से मोटे मोटे जो है वो दो किस्म है, दो किस्म की ट्रैफिक क्रॉसिंग. एक ट्रैफिक क्रॉसिंग होती है पुराने शहर की ट्रैफिक क्रॉसिंग और एक ट्रैफिक क्रॉसिंग होती है बिल्कुल नए मॉडर्न शहर की ट्रैफिक क्रॉसिंग. तो पुराने शहर की ट्रैफिक क्रॉसिंग के ऊपर किस तरह की ट्रैफिक आती है, उसके ऊपर जो है वो हमारा मुल्क तो माशाल्लाह अभी भी गधे गाड़ी है, ऊंट गाड़ी, तो गाय, कोई इस किस्म का पुरानी सी गाड़ी, फटफड़ी, है ना, इस किस्म की चीजें आ रही होती हैं। गांव की ट्रैफिक क्रॉसिंग होती है तो उसके ऊपर ट्रैक्टर भी आ रहा होता है, उसके ऊपर और भी इस किस्म के अजीब गरीब किस्म के चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है वो माशाल्लाह, अगर कोई आप रियाज में रहते हैं तो ओलैया के जो है ना वो मलिक फहद की ट्रैफिक क्रॉसिंग के ऊपर आए, तो इधर से रोल्स रॉयस आ रही होगी, इधर से जो है वो BMW आ रही होगी, उधर से जो है वो बेंज आ रही होगी, इधर से जो है वो ना जाने क्या क्या, दुनिया की जितनी महंगी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हवाले कर दी हैं, ठीक है ना। अमेरिका में इतनी महंगी गाड़ियां नहीं होती हैं जितनी के यहाँ पर स्क्वायर फी स्क्वायर यार्ड जो है ना वो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां इधर मौजूद होती हैं। तो यहाँ की जो ट्रैफिक क्रॉसिंग है उसमें अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, और वहां की जो ट्रैफिक क्रॉसिंग है वहां पर बुरी बुरी गाड़ियां आ रही हैं। यही मामला इंसान के माहौल का भी होता है, ठीक है ना। तो बुरा माहौल, अगर इंसान अपने आप को बुरे माहौल में रखेगा, बुरी चीजों से के गिर्द रहेगा और अपने गिर्द बुराई को सराउंड करके रखेगा, जैसे कि फिल्म देख रहा है, टीवी देख रहा है, और गंदी नॉवलें पढ़ रहा है, गंदे लोगों से बातचीत कर रहा है, हर तरफ इसकी निगाहें उठ रही हैं, जो सड़क के ऊपर बिलबोर्ड लगे हुए हैं हर बिलबोर्ड को इसने देखना है, हर चीज को इसने, है ना, अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करनी, अपने कानों की हिफाजत नहीं करनी, तो ऐसा शख्स जो है वो बुरे माहौल में घिरा हुआ है। अब इसके जहन के चौराहे के ऊपर बुरे ख्याल आते आने, इसलिए कि आपने अपने आप को बुरी जगह पे रखा हुआ है तो बुरे ख्याल ही आएंगे ना, बुरी ट्रैफिक ही आएगी ना ख्यालात की। लेकिन अगर आप नेक माहौल में चले जाएंगे, ठीक है ना, आप नेकों के साथ उठे बैठेंगे, आप अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, गंद को जो है वो अपने निगाहों के जरिए से अपने दिमाग में नहीं दाखिल होने देंगे, अपने कानों के जरिए से गंद को, गुनाहों की, अपने दिमाग में नहीं दाखिल होने देंगे, और अल्लाह के जिक्र के अंदर लगेंगे, कुरान मजीद की तिलावत भी करेंगे, कुरान मजीद का इल्म भी हासिल करेंगे, है दीन का इल्म हासिल करेंगे, तो ये आपका अच्छा माहौल है। अब इस अच्छे माहौल में जब आपका दिमाग रहेगा तो उसके अंदर जो ख्यालात तो आएंगे, लेकिन कौन से ख्यालात आएंगे, अच्छे ख्यालात आएंगे, ठीक है ना। अब लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी बुरे ख्याल आते हैं और हर वक्त जो है ना वो इस किस्म की सोचें लगी रहती हैं। कुछ खवातीन जो हैं, खवातीन में शहवत का मर्ज नहीं होता, ज्यादा थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, तो उनको किस किस्म के गंदे ख्याल आते हैं, इसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने मेरे खिलाफ बात कर दी, उसने जो है वो ऐसे बात कर दी, उसने ऐसे बात कर दी, यानी खानदान वालियों के खिलाफ जो है ना उनके जहन में ख्याल आते रहते हैं, ठीक है। तो भाई आप अपने आप को ऐसे माहौल से निकालें, आप अच्छे माहौल में जुड़ें, आप अपने आप को अच्छी किताबों के साथ जोड़ें, आप अपने आप को अच्छे लोगों के साथ जोड़ें, अच्छी क्लासेस लिया करें, तफसीर सुना करें, पढ़ा करें, है ना। हर वक्त क्यों आप जो है वो खानदान वालियों के साथ जो है वो लगी रहती हैं, हर वक्त आप एंगेज रहती हैं, या आपका कसूर है कि आप क्यों हर वक्त एंगेज रहती हैं। तो अपने आप को डिसएंगेज करें, बुरे माहौल से डिसएंगेज करें और अच्छे माहौल से एंगेज करें, तो फिर जो है ना ये जहन के अंदर गंदे ख्यालात की ट्रैफिक कम हो जाएगी, और कम होते होते तकरीबन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी, तकरीबन खत्म जरूर हो जाएगी, और थोड़े बहुत जो गंदे ख्यालात आएंगे उनको हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा ना, ठीक है ना। कितना आसान सा हल है, कितनी सीधी सी बात है, काश कि हम इसको समझ करके इसके ऊपर अमल भी कर लें, ठीक है। तो ये जो बुरे ख्यालात होते हैं ये गुनाह तो नहीं होते, लेकिन ये एक मुसीबत बहुत बड़ी होते हैं, मुसीबत जरूर होते हैं ये, क्योंकि क्योंकि आपका दिमाग फिर इन्हीं चक्करों के अंदर लगा रहेगा ना, हर वक्त आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अच्छे, यानी उन्होंने तो अपने ऊपर मेहनत करी हुई थी, अच्छे माहौल के अंदर अपने आप को रखा हुआ था, अल्लाह के जिक्र के माहौल में, तकवा के माहौल के अंदर अपने आप को, ठीक है। तो एक इस किस्म का मामला उनके साथ पेश आया, ठीक है ना, शायद सारी जिंदगी में एक ही इस किस्म का हो सकता है मामला पेश आया हो, ठीक है। तो गैर इख्तियारी वसवसे की हैसियत रखता है जो गुनाह में दाखिल नहीं है। किसी को कोई सवाल हो, किसी ने कोई रेज हैंड भी किया था भाई, अगर किया था तो आप यहाँ पे चैट विंडो पे सवाल अपना लिख दें। अच्छा, कुरान करीम का असलूब बयान भी खुद इस पर शाहिद है, क्योंकि दोनों का हम व ख्याल अगर एक ही तरह का होता तो इस जगह बसीगे तस्निया व लकद हम्मा कह दिया जाता, जो मुख्तसर भी था, ठीक है ना, अल्फाज कम हो जाते हैं ना, कुरान मजीद में तो इख्तिसार है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इख्तिसार इख्तियार नहीं किया, यहाँ पे कम अल्फाज इख्तियार नहीं किए, बल्कि रिपिटेशन हुई एक ही लफ्ज की, क्यों रिपिटेशन हुई, कोई वजह थी, इस वजह से हुई ना, तो इससे बात साबित हो गई। फिर आगे सही मुस्लिम की हदीस भी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली थी, ठीक है। खुलासा यह है, यानी तीसरा पैराग्राफ इसका, खुलासा खुलासा यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में जो ख्याल या मैलान पैदा हुआ वो महज गैर इख्तियारी वसवसे के दर्जे में था, जो गुनाह में दाखिल ही नहीं। फिर उस वसवसे के खिलाफ अमल करने से अल्लाह ताला के नज़दीक उनका दर्जा और ज्यादा बुलंद हो गया। ठीक है, और बाद मुफस्सरीन ने इस जगह ये भी फरमाया, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल तफसीर, थोड़ी सी जरा हो सकता है किसी के लिए मुश्किल हो उसको समझना, कि बाज़ मुफस्सरीन ने इस जगह ये भी फरमाया है कि कलाम में तकदीम व ताखीर वाकई हुई है। ठीक है, तकदीम व ताखीर, तकदीम का मतलब होता है जो चीज बाहर आनी चाहिए, जो चीज बाद में आनी चाहिए थी उसको पहले लेकर के आए, और जो चीज पहले आनी चाहिए थी उसको मुअख्खर कर दिया। ठीक है ना, तो तकदीम व ताखीर वाकई हुई है, कभी कलाम के अंदर ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो लौला अर्रआ बुरहान रब्बी ही जो इस आयत में बाद में मजकूर है वो असल में मुकद्दम है, यानी मानी के एतबार से मुकद्दम है, लफ्जन मुअख्खर है। लफ्जी एतबार से तो वो बाद में आया, लेकिन मानी मानवी एतबार से वो असल में पहले है। ठीक है, और मानी आयत के ये हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्याल पैदा हो जाता अगर अल्लाह की हुज्जत बुरहान को ना देख लेते। ठीक है, यानी ये दूसरी तफसीर है। पहली तफसीर के मुताबिक तो ऐसा नहीं है, पहली तफसीर के मुताबिक तो ये है कि भाई उनके दिल में भी ख्याल आया। ठीक है, यानी आ चुका ख्याल, उसके बाद है लौला अर्रआ बुरहान रब्बी, अगर उनके सामने उनके रब की बुरहान ना आ जाती, वो ना देख लेते तो फिर वो उसके ऊपर अमल भी कर लेते। ठीक है ना, ये पहली तफसीर है। और दूसरी तफसीर ये है कि वो उसके ऊपर अमल कर ले के अगर वो अल्लाह की निशानी को ना देख लेते तो उनके दिल में ख्याल पैदा हो जाता। ठीक है ना, फर्क समझ रहे हैं, दोनों तफसीरों के अंदर फर्क ये है। लेकिन बुरहाने रब को देखने की वजह से वो इस हम और ख्याल से भी बच गए, यानी ख्याल आया ही नहीं उनके जहन में। ठीक है ना, दूसरी तफसीर क्या है कि ख्याल आया ही नहीं उनके जहन में। ठीक है, मजमून ये भी दुरुस्त है, यानी मकसद तो इससे भी पूरा हो रहा है कि भाई इस्मत अंबिया के भाई नबी जो है ना वो गुनाह नहीं करता, तो वो मकसद तो इससे भी पूरा हो रहा है, दूसरी तफसीर में भी पूरा हो रहा है। इस वजह से मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मजमून ये भी दुरुस्त है, मगर बाज हजरात ने इस तकदीम व ताखीर को कवायदे जुबान के खिलाफ करार दिया है। कभी अरबी जुबान में ना ये यानी ऐसे किया नहीं जाता, ये अच्छी जुबान, यानी कुरान मजीद के एजाज के और कुरान मजीद के जो बेहतरीन क्या कहते हैं यानी जो जो बेहतरीन फसाहत व बलागत के, ठीक है ना, ये खिलाफ है। और इस लिहाज से भी पहली ही तफसीर राजे है कि उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान तकवा व तहारत और ज्यादा बुलंद हो जाता। ठीक है ना, यानी पहली तफसीर जो है ना वो इस वजह से प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल है कि उससे और ज्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान बुलंद हो जाती है कि भाई तबीयी और बशरी तकाजे के बावजूद वो गुनाह से महफूज रहे। राइट, यानी उनके अंदर तकादा था क्योंकि वो बशर थे, हर हर नबी जो है वो इंसान होता है, बशर होता है। ठीक है ना, अगर फरिश्ते को उठा के नबी बना दिया जाता, ठीक है ना, तो फिर फरिश्ते के अंदर तो ये तकाजे हैं ही नहीं, तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। अगर किसी के अंदर जो है ना वो शहवत है ही नहीं, तो वो अगर शहवत के गुनाह से बचा तो फिर कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो उसी वक्त होती है ना कि भाई ये सारी चीजें आपके अंदर मौजूद थी, लेकिन आप क्यों बचे, अल्लाह के मोहब्बत की वजह से बचे, अल्लाह की खशियत की वजह से बचे, ये है ना बड़ी बात इंसान की। ठीक है, तो वो तो फिर पहली तफसीर से यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए साबित होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि भाई एक शख्स जो है ना वो बिल्कुल ही कोई गांव में रह रहा है, कोई औरत है ही नहीं वहां पर, और आराम से जो है ना वो माशाल्लाह सुबह को उठता है, मस्जिद जाता है, मस्जिद से नमाज पढ़ के वापस आता है, फिर उसके बाद जो है वो कुरान की तिलावत में मदरसे के माहौल में रह रहा है ना, कोई टेम्पटेशन है ही नहीं। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, और आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक शख्स है जिसको कि मजबूरन यूरोप जाना पड़ गया, राइट, फ्रांस जाना पड़ गया, मजबूरन कोई ऐसी मजबूरी थी भाई, किसी किस्म का तकाजा आया, शरी तकाजा आया, कोई जरूरत आई, अपने वो साइट सीइंग की वजह से की बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई शरी तकाजा आया जिसकी वजह से उसको फ्रांस जाना पड़ गया। अब वहां पर तो हर तरफ जो है वो नंगे बदन और अजीब और गरीब किस्म की तस्वीरें और अजीब और गरीब किस्म के स्टैचूज और ये सब, वहां पे ये अपनी निगाह की हिफाजत कर रहा है अल्लाह के खौफ की वजह से। ठीक है ना, तो भाई ये है ना फिर बड़ा मुकाम। अब ये नहीं कह रहे कि भाई आप पहले जाएं फिर उसके बाद अपने आप को अपनी निगाहों की हिफाजत करें, ये तो है ही नहीं हमारे दीन में, तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पहले अपने आप को गुनाह के माहौल में डालो ताकि मैं बचूंगा फिर उसके बाद जो है मेरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा दीन तो पहले सिखाता है कि भाई तुम्हें तो मौत का पता नहीं है, इधर जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तो तुम ये प्लानिंग करके फ्रांस जा रहे हो ना कि वहां जाके मैं तकवा इख्तियार करूंगा, मेरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, जन्नत में ऊंचा मकाम मिल जाएगा, तो तुम्हें मौत से बचने का सर्टिफिकेट किसने दिया है पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी को मजबूरन जाना पड़ गया और वो वहां पे जाकर के बच रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात है ना। इसके बाद जो ये फरमाया कि लौला अर्रा बुरहान रब्बी, इसकी जजा महजूफ है। ठीक है ना, कि अगर नहीं उसने देखा होता अपने रब की बुरहान तो क्या होता, ये अल्फाज में मनकूल नहीं है बल्कि हजफ हुआ हुआ है, यानी डिलीटेड है यहां से। ठीक है, और मान ये है, यानी डिलीटेड का मतलब ये नहीं नाउज बिल्ला सहाबा कराम ने डिलीट कर दिया या जो है वो किसी बात के कॉपी करने वाले ने डिलीट कर, बल्कि अल्लाह ताला ने वो अल्फाज यहाँ पे रखे ही नहीं। ऐसा भी होता है बहुत सी जगहों पर, अरबी जुबान का भी ये हिस्सा है और कुरान मजीद में ऐसा भी होता है। तो मानी ये है कि अगर वो अपने रब की बुरहान और हुज्जत को ना देखते तो इस ख्याल में मुब्तला रहते, मगर बुरहान रब देख लेने की वजह से वो गैर इख्तियारी ख्याल और वसवसा भी कल्ब से निकल गया। ठीक है, बुरहान ना देखते तो उसके अंदर जो है ना वो मुब्तला रहते। और ये जो बात है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो अब कोई कहे कि भाई अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो बुरहान देख लिया ना, राइट, मैंने तो बुरहान नहीं देखी थी इसी वजह से तो मुझसे गुनाह हो गया। ठीक है ना, तो भाई मेरा क्या कसूर और उनकी क्या बड़ाई, भाई उन्होंने बुरहान देखी इस वजह से बच गए, मैंने बुरहान नहीं देखी इस वजह से मैं नहीं बचा। ठीक है ना, बुरहान क्या चीज थी जो भी थी, इनको समझ में तो कुछ है नहीं, इस वजह से खामखा की बात कर रहे हैं। बहरहाल, तो इसका जवाब ये होगा कि बुरहान जो है ना ये फ्री में नहीं मिलती। ठीक है ना, ये बुरहान को अर्न करना पड़ता है। ठीक है ना, नथिंग इज फॉर फ्री, और बुरहान तो बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला की निशानी, इसको तो बहुत ज्यादा अर्न करना पड़ता है। क्या मतलब, जो अपनी बाकी जिंदगी में जबकि इस किस्म की सिचुएशंस से उसको वास्ता नहीं पड़ रहा, वो अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करता है, नेक माहौल का इंतजाम का एहतमाम करता है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, ठीक है ना, और गुनाहों से बचने की उसको फिक्र लगी होती है, अल्लाह से दुआएं करता है कि ए अल्लाह मैं इम्तिहान के काबिल नहीं, मेरे मौला मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना, ये दुआएं इस किस्म की दुआएं मांगता है अल्लाह ताला से। तो फिर जब उसके ऊपर अगर कोई आजमाइश आती भी है ना इस किस्म की, तो अल्लाह ताला फिर बुरहान साहब को भेज देते हैं उसके पास, अंकल बुरहान आ जाते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, और फिर वो बच जाता है क्योंकि अल्लाह ताला से उसने दुआएं मांगी थी, और खाली दुआएं नहीं मांगी थी बल्कि दवाएं भी करता रहा था। ठीक है ना, कि भाई अपने आप अपने ऊपर मेहनत भी करता रहा था। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो इन दोनों बातों का एहतमाम करता है, दुआ एंड दवा, तो फिर जब स्पेशल सर्कमस्टेंस आती है तो फिर उसके बाद बुरहान आ जाती है। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं है, ये आम है, हर बंदे के साथ ऐसा होता है। और इस किस्म के वाकयात पुराने जमाने में बहुत हुए, बनी इसराइल के इबादत गुजार नौजवान है ना, उसको जो है वो फाहिशा औरत के घर के अंदर जाना पड़ गया, और वहां पर जो है वो फाहिशा औरत आ गई और वो जो है ना वो तो उसका तो यानी इंतकाल ही हो गया, इससे पहले कि वो गुनाह करता उसका इंतकाल ही हो गया। तो बनी इसराइल के अंदर भी ऐसे वाकयात मौजूद हैं, और हमारे हजरत ने तो 20-21वीं सदी का भी वाकया सुना है, और वो भी कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी का, कि एक नौजवान साहब जो है वो हजरत साहब के पास आए हांफते हुए कांपते हुए, और आकर के बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास के अंदर एक लड़की है, बहुत हसीन और जमील गोरी लड़की, वो एक दिन जो वो बड़े दिनों से मेरे पीछे लगी हुई थी, और एक दिन जो है ना उसने ऐसा प्लान बनाया है कि बिल्कुल जो है ना उसने मुझे यानी फंसा लिया, हत्ता के यानी बिल्कुल गुनाह के लिए सारे असबाब जो है वो उसने खुद इकट्ठे कर लिए। ठीक है ना, उस वक्त जो है ना वो उसने कहता है कि बस आपके साथ ताल्लुक था, निस्बत थी, अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई, मैं वहां से भागा, ठीक है ना, और भाग करके मैं ठीक सीधा आपके पास आया हूँ। इसी तरह का वाकया जो है वो कोई 100-150 साल पहले जो किताबों में लिखा हुआ है, कि एक बहुत ही मुत्तकी परहेजगार नौजवान जो है वो मदरसे जाया करता था, तो एक जो है ना गली के अंदर एक औरत रहती थी, वो उसके ऊपर फरेफ्ता हो गई, उसने फिर एक इस तरीके से प्लान बनाया, ठीक है, बूढ़ी अपनी मासी से कहा कि जाकर के उसको कहो कि अंदर एक औरत जो है बड़ी बीमार है, तुम आकर के उसके लिए दुआ कर दो। तो वो जैसे ही वो नौजवान आएगा तुम यहां से चली जाना। इसी तरीके से उसने भी किया, और अल्लाह ताला ने इसको क्या बुरहान नसीब फरमाई, इस मदरसे के नौजवान को, जब ये फंस गया उस औरत के घर के अंदर, कि इसके दिल में ये आया कि इसके मुझे बाथरूम जाना है ना, मेरे तो पेट में इतना शदीद दर्द हो रहा है, मुझे तो फारिग होने के लिए जाना है। अंदर गया तो पुराने जमाने में जो बाथरूम होते थे उनके अंदर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था, ठीक है ना, तो जो गंदगी होती थी वो वहीं पड़ी होती थी, बाद में भंगन आती थी उसको साफ करके लेके जाती थी और फिर दूर जाके फेंकती थी, तो वहां पे नजासत पड़ी हुई थी। इसने उस नजासत को उठा करके अपने जिस्म के ऊपर मल लिया, अपने कपड़ों के ऊपर मल लिया। अब जब ये उस बाथरूम की जगह से बाहर निकला है तो इसके अंदर से बदबू जो उठी ना, और ये जो उस औरत ने देखा कि इसको पखाने को अपने ऊपर मला हुआ है, उसको तो ऐसी घिन आई, उसने कहा तू तो तेरा तो दिमाग ही खराब है, तुम तो पागल हो, तुम तो दीवाने हो, निकल जाओ मेरे घर से, है ना। ये जो है ना वो रोता धोता वहां से निकला और ठीक मदरसे पहुंचा, जिस तरह से भी इसने पानी वानी कहीं रास्ते से है ना लेकर के थोड़ा बहुत अपने आप को साफ किया, लेकिन इतना तो साफ नहीं कर सकता था अपने आप को। मदरसे पहुंचा और जाकर के अपने क्लास के अंदर पीछे जाके बैठ गया। उस्ताद साहब कहते हैं ये इतनी तेज खुशबू कहां से आ रही है, ये कहां से आ गई, इतनी तेज खुशबू एकदम से कहां से उठनी शुरू हो गई। तो सबने जब तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि ये तेज खुशबू जो है वो उस नौजवान के कपड़ों से उठ रही थी। ठीक है, पूछा कि तुम इतनी तेज खुशबू लगा कि कहां से आ गए, क्यों आ गए। तो उस वक्त उसने रोते हुए बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, अल्लाह ताला ने उस नजासत की जो बदबू थी उसको खुशबू से तब्दील कर दी। ठीक है, तो ये जो वाकयात है ना इस तरीके के, ये तो भाई ये कोई पुराने नहीं हो गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाकया ऐसा नहीं है, ये तो उसूल है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। करना क्या होता है कि अपनी नॉर्मल जिंदगी को जो है ना वो अल्लाह ताला के जिक्र और अल्लाह ताला की फिक्र के साथ गुजारना होता है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। और अगर नहीं गुजारोगे तो फिर तो भाई कहां से हिफाजत, फ्री में को थोड़ी हिफाजत होती है, हिफाजत तो सबसे बड़ी चीज है अल्लाह ताला की, ठीक है ना। तो यू हैव टू अर्न इट ना, अर्न करने के लिए अल्लाह ताला हम सबको, हमारी आल औलाद को, हमारी नस्लों को तैयार कर दे कि वो अल्लाह ताला की हिफाजत को, मोहब्बत को अर्न करने की फिक्र के अंदर, उसको कमाने की फिक्र के अंदर लग जाए हम सब के सब। ठीक है, फिर हिफाजत जो है ना फिर कहीं नहीं गई, अल्लाह ताला जब हिफाजत पे उतर आए ना फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान करीम ने ये वाजे नहीं फरमाया कि वो बुरहान रब्बी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आई वो क्या चीज थी, इसीलिए इसमें हजरत मुफस्सरीन के अकवाल मुख्तलिफ हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, मोहम्मद बिन सीरीन, हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन वगैरह ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने बतौर मुअज्जा उस खलबतगाह में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत इस तरह उनके सामने कर दी कि वो अपनी उंगली दांतों में दबाए हुए उनको मुतनब्बे कर रहे हैं कि वो तुम क्या कर रहे हो बेटा, क्या हो गया, राइट। इस तरह से होता है ना कभी बड़े करते हैं। और बाद मुफस्सरीन ने फरमाया कि अजीज मिस्र की सूरत उनके सामने कर दी गई, ठीक है, यानी याद दिहानी, ठीक है। तो सूरत उनके सामने कर दी गई मतलब ये को थोड़ी कि पोर्ट्रेट बना करके किसी ने ला के सामने, भाई जहन के अंदर सूरत आ जाना ये भी काफी होता है, ठीक है ना, या बाकी पोर्ट्रेट आ गई, हु नोस, सही है। तो बाज ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर छत की तरफ उठी तो उसमें ये आयत कुरानी लिखी हुई थी, लिखी हुई देखी, ला तकरबु जना इन्नहु काना फाहिशा वसाअ सबीला, ठीक है, ये तो कुरान मजीद की आयत है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान अगरचे के शायद उस वक्त तो इब्रानी और सुरियानी जुबान हो चुकी थी, लेकिन कुरान मजीद की जो 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 जुबान है ना, ये यानी ये अल्लाह ताला की खसूसी देन है, ये जो कुरानी अरबी है ना ये अल्लाह ताला की खुसूसी नेमत है इंसानियत के लिए। और किताबों में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम की जुबान अरबी ही थी, और ये अरबी जुबान जो है ना वो उस वक्त तक इंसानियत के अंदर अरबी ही जुबान चलती रही जब तक इंसानियत में गुनाह राइज नहीं हो गया, ठीक है ना, कि भाई चले गए, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जो है वो शिर्क और बुत परस्ती जो है ना वो आम हो गई। तो उसकी जो सजाएं मिली है ना इंसानियत को, उनमें से एक सजा यह है कि अरबी जुबान से महरूम कर दिया गया और दूसरी जुबानें राइज हो गई, ठीक है। तो जो मासूम होंगे, जो अल्लाह के नबी होंगे, बेशक वो उस इलाके की जुबान भी बोल रहे होंगे, लेकिन अरबी जुबान की नॉलेज ऐसा लगता है कि उनको वदीअत फरमा दी गई कि उनको अरबी जुबान भी आती थी, ठीक है। तो कुरान मजीद की आयत अल्लाह ताला ने वहां पे करवा दी इस तरह से। उन्होंने देखा कि यानी जुबा जिसका तर्जुमा बनता है कि यानी जिना के पास ना जाओ क्योंकि वो बड़ी बेहयाई और पहले खुदाबंदी का सबब और मुआशरे के लिए बहुत बुरा रास्ता है। पूरा मुआशरा जो है वो बर्बाद हो जाता है, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी और उसके असरात जो है वो आपकी ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर हम नजर आ रहे हैं। तो मुआशरा जो है फिर उसके बाद किसी काबिल नहीं रहता इस गुनाह के बाद। तो बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया कि जुलैखा के मकान में एक बुत था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। वैसे बाकी तो बाकी भी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी रेलिवेंट है। शर्म, लिहाज, ठीक है ना, काफिरों से भी सीखो कि शर्म क्या चीज होती है अगर खुद शर्म नहीं है अपने अंदर। तो जुलैखा के मकान में एक बुत था, उसने उस बुत पर पर्दा डाला। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो उसने कहा कि ये मेरा माबूद है, इसके सामने गुनाह करने की जरूरत नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा माबूद इससे भी ज्यादा हया का मुस्तहिक है, ये बुत तो देखता भी नहीं है, लेकिन देखो इस औरत को अपने इस अंधे पहरे गूंगे बुत का इतना ख्याल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देखते हैं, समी हैं, बसीर हैं, ठीक है। तो उसकी नजर को कोई पर्दा नहीं रोक सकता। और ठीक है, तो ये सारे बुरहानों यानी पॉसिबल बुरहान्स थे जो कि मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हैं। और बाज़ हज़रात ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत और मारिफत इलाहिया खुद ही बुरहाने रब थी। ठीक है, इमाम तफसीर इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम अकवाल को नकल करने के बाद जो बात फरमाई है वो सब अहले तहकीक के नजदीक ज्यादा नहायत पसंदीदा और बेगुबार है, यानी क्लियर है। वो ये है कि जितनी बात कुरान करीम ने बतला दी है सिर्फ उसी पर इक्तफा किया जाए, यानी यह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी चीज देखी जिससे ये वसवसा उनके दिल से जाता रहा। इस चीज की तयीन में वो सब एहतमाल हो सकते हैं जो हजरात मुफस्सरीन ने जिक्र किए हैं, लेकिन कतई तौर पर किसी को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना भाई, कतई तौर पे तो नबी अलैहिस्सलाम अगर बताते कि ऐसा हुआ था तब उसको मुतय्यन किया जा सकता है, वरना तो बनी इसराइल की रिवायात में से अगर कोई चीजें आ गई हैं तो उनको हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, एज लॉन्ग एज उनमें से कोई जो है वो उसूल शरीयत के खिलाफ नहीं है, और इनमें से कोई भी बात उसूल शरीयत के कोई खिलाफ नहीं है, कोई भी हो सकती है। तो डिटर्मिनिस्टिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। बस कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं जरा तेज जाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तो फरमाते हैं कि कज़ालिका लिनसरिफ अनहु सूअ वल फहशा इन्नहु मिन इबादिना मुखलसीन, यानी हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बुरहान इसलिए दिखाई कि उनसे बुराई और बेहयाई को हटा दें। लिनसरिफा, सर्रफा युसर्रिफु, और सर्फ पहले भी बताया था ना कि यानी बदल देना, हटा देना। ठीक है, दुआए इस्तिखारा वो सबको याद होनी चाहिए, किसी को नहीं याद है तो लाजिमन उसको याद करना है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमें इस्तिखारी की दुआ इतनी ताकीद के साथ सिखाया करते थे कि हम पहले ये ख्याल करते थे कि कुरान की आयत है, बाद में पता चला कि नहीं ये कुरान में दाखिल नहीं है, ये तो नबी अलैहिस्सलाम एक दुआ सिखा रहे हैं, मसनून दुआओं में से एक दुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर यही दुआ है ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वअस्तखीरुका बिकुदरतिका वअसअलुका मिन फ़ज़लिका अल-करीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु वला तक़दिरु फ़इन क्या है, फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु तअलमु वला अलमु अंता अलामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुंता तअलमु अन्न हाज़ल अम्रा खैरुल लि फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़यस्सिरहु लि वअक़दिर लि। ठीक है, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه فاصرفه عني। ठीक है ना, उसको मुझसे फेर दीजिए, वसरिफनी अनहु, और मुझे उससे फेर दीजिए। ठीक है ना, यानी हमारे रास्ते जुदा कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, मुझे इधर कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहां पर भी अल्लाह ताला ने सर्फ का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, कि इसलिए हमने फेर दिया उससे सू को और फाशा को, यानी हटा दिया, रास्ते ही जुदा कर दिए इन दोनों चीजों के, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता अलग कर दिया और फहश और बुराई का रास्ता अलग कर दिया। वो फरमाते हैं कि यानी हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बुरहान इसलिए दिखाई कि उनसे बुराई और बेहयाई को हटा दें। बुराई से मुराद सगीरा गुना और बेहयाई से कबीरा गुना है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सू से मुराद जो है वो सगीरा गुना और फाहशा से मुराद जो है वो कबीरा गुनाह है। ठीक है ना, कुरान मजीद में दूसरी जगह पर भी ये सू के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मैय अमल सू आई युजा बिही, जो भी गुनाह करेगा वो उसकी जजा पाएगा। ठीक है, वहां पर भी सू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसमें अभी तो खैर तफसीर देखने का मौका नहीं मिला है उसकी, दोबारा से जहन में नहीं एग्जैक्ट मुफस्सिर ने क्या लिखा है, लेकिन वहां पर ऐसा लगता है कि जो बात याद है कि वहां पर सू से मुराद जो है ना वो हर किस्म के गुनाह है, जबकि यहां पर दो अलग अलग जब लफ्ज इस्तेमाल हो गए ना, तो पहले को जो है वो सगीरा गुना और दूसरे को जो है वो कबीरा गुना से ताबीर दी। तो यहां ये बात काबिले नजर है कि बुराई और बेहयाई को यूसुफ अलैहिस्सलाम से हटा देने का जिक्र फरमाया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई और बेहयाई से हटाना नहीं फरमाया है। कितनी बारीकी में जाके बात फरमाई है, कितनी बार अल्लाह जदाए खैर दे हमारे अकाबरीन को, उलमाए कराम को, कि कैसी कैसी बात खोलते हैं ना। सुपरफिशियली देखें तो भाई बस हट गए दोनों एक दूसरे से, नहीं ये नहीं फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से हटाया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम बुराई की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको रोक दिया, नहीं, बल्कि बुराई यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रही थी, ये नहीं बढ़ रहे थे बुराई की तरफ, बुराई इनकी तरफ बढ़ रही थी उसको फेर दिया। ठीक है, जिसमें इशारा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अपनी शान नबूवत की वजह से उस गुनाह से खुद ही अटे हुए थे, मगर बुराई और बेहयाई ने उनको घेर लिया था, यानी जुलैखा और जुलैखा के सारे इकट्ठे किए हुए असबाब, ये थी बुराई। ठीक है ना, वो बुरा माहौल था, उनका कोई अमल दखल नहीं था इसके अंदर, तो हमने उसके जाल को तोड़ दिया। पुराने करीम के ये अल्फाज भी इस पर शाहिद हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी अदना गुनाह में भी मुब्तला नहीं हुए, और उनके दिल में जो ख्याल पैदा हुआ था वो गुनाह में दाखिल ही नहीं था, वो तो बेअख्तियारी वसवसा था। वरना यहां ताबीर इस तरह होती, यानी अल्लाह ताला इस वाकये को ऐसे ताबीर फरमाते कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से बचा दिया, ना ये कि गुनाह को उनसे हटा दिया। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप जब गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो आपने जो है वो किसी खड़ी हुई गाड़ी को जाके मार दिया, तो किसका कसूर होता है? आपका कसूर होता है। ठीक है ना, और एक ये होता है कि जी इधर से आप भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आगे से भी एक गाड़ी आ रही है, दोनों ने गलती करी, दोनों ने ट्रैफिक लाइट तोड़ी, तो फिर दोनों का जो है ना वो बीच में तसादम हो गया, इसमें किसका कसूर है? दोनों का कसूर है। और एक ये भी तो होता है ना कि आप तो खड़े हुए थे आराम से भाई, पार्किंग लॉट में आप खड़े हुए, आपकी प्रॉपर जगह पे आपने पार्क करी हुई है, उधर से कोई खान साहब आए, कोई मतलब कोई भी है ना आए अपनी मस्त मलंग, कोई आए, उन्होंने आके आपकी गाड़ी को मार दिया, तो इसमें किसका कसूर है? आपका बिल्कुल भी कसूर नहीं है, उसका कसूर है। ठीक है, तो यहां पर वो तीसरी वाली सूरत थी कि गुनाह आपकी तरफ बढ़ रहा था, आप तो बिल्कुल यानी, तो ये जो बुरा माहौल है, ये बुरा माहौल जो है ना वो कितना यानी कितना असर होता है उसका, एक बंदा खुद नहीं बढ़ रहा गुनाह की तरफ, बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन बुरा माहौल का इतना तो असर होता है ना कि वक्त के नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर भी गैर इख्तियारी वसवसा पैदा हो जाता है, वो तो नबूवत मारिफत इलाही और जो है वो इतनी कुर्बानियां अल्लाह ताला के साथ, खुसूसी ताल्लुक और तकवा वाली जिंदगी, सब कुछ, ये सब कुछ था तो बच गया ना। ठीक है ना, अल्लाह ताला के साथ निस्बत थी और कुछ नहीं भी था तो मतलब सब कुछ ही था उनके पास तो, लेकिन जैसे उस नौजवान की आपको एक मिसाल बताई थी जो हजरत ने न्यूयॉर्क का वाकया बताया था, तो उनको तो शायद मैं जानता भी हूँ बल्कि शायद, ठीक है, तो उनके पास तो ऐसी कोई विलायत कुबरा वगैरह की बातें नहीं थी, लेकिन वक्त के एक वली के साथ निस्बत तो थी ना, है ना, किसी न, किसी के सामने अपने आप को सुपुर्द तो किया हुआ था ना, किसी को जो है वो अल्लाह की यानी ताल्लुक की वजह से अपनी जिंदगी के अंदर एक अहम मुकाम दिया हुआ था, ये सारी चीजें भी तो अल्लाह ताला को पसंद आती है ना, तो अल्लाह ताला जो है ना फिर बचा लेते हैं। लेकिन जिसके पास इनमें से कुछ भी ना हो, ना तो अच्छे माहौल का हिस्सा बना हुआ हो, ना जो है वो ऐसा मेच्योरिटी का की जिंदगी में हो, और उसको जो है वो आपने उठा करके ऐसे गंदे माहौल के अंदर डाल दिया, जैसे कि हम अपने बच्चों को उठा करके स्कूल के माहौल में, फिर कॉलेज के माहौल में, बगैर तैयारी किए हुए, बगैर उनको जो है ना वो यानी नेक बनाए हुए, नेक बनाने की कोशिश किए हुए, और उनके लिए हम दुआएं भी नहीं मांग रहे होते, बाकी तो दुआएं
अंग्रेला वो फर्स्ट आ जाए और उसकी जो है वो अच्छे ग्रेड्स आ जाएं और जो है ना वो उसको अच्छी सी नौकरी भी मिल जाए और अच्छी जगह पे उसकी शादी भी हो जाए और जो है ना वो यानी फुटबॉल कंपटीशन के अंदर भी जो है वो मेडल उठा ले और सारी दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन ए अल्लाह उसको गुनाह से बचा के रखना, उसको गुनाह से बचा के रखना, अपनी नाफरमानी के रास्ते के ऊपर मेरी औलाद को ना डालने देना, ना चलने देना। ऐसी दुआएं कौन मांगता है अपनी अपनी औलाद के लिए, ठीक है ना? तो मजबूरन जब बुरे माहौल में भेजना भी पड़ रहा है, जैसे कि लड़कों को, लड़कों के जिम्मे अल्लाह ताला ने जो है वो कमाना और घर को चलाना, ये अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारी बनाई है, ठीक है ना? तो इस जिम्मेदारी की वजह से हायर एजुकेशन की एक मजबूरी भी है। अगर वो दूसरे तरीकों से अगर वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते तो भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा उनको, और उससे आपको कोई मना भी नहीं करेगा, ठीक है ना? हाँ, स्कूलिंग के लेवल तक जो है वो इतने छोटे बच्चों को बुरे माहौल में डाल करके नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि छोटे बच्चों को बुरे माहौल में डाल करके खाली दुआएं करना उसके लिए, नहीं। छोटे बच्चे को तो भाई अभी आपने, वो इंसान का बच्चा है, वो कोई वो फौलाद का बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा है, उसको तो आपने पहले यानी उसकी तरबियत अच्छी करनी पड़ेगी, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, फिर बड़े होने के बाद जब वो इस तरह से अच्छे माहौल के अंदर जब बड़ा हो गया, फिर उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन के लिए भेजा है तो फिर दुआएं पीछे से उसका साथ देंगे, ठीक है ना? हम तो यानी मॉन्टेसरी से जो है वो गंदे माहौल में डाल देते हैं ना, मॉन्टेसरी से जो है वो काफिरों के हवाले कर देते हैं, या जिनके यानी सो कॉल्ड मुसलमान हैं लेकिन अकीदे के काफिर हैं, या उनके जो है वो बिल्कुल ही मिजाज ही जो है वो यानी हर चीज हया के भी खिलाफ है, और यानी ऐसे लोगों के जो है ना वो अपने छोटे छोटे बच्चों को हवाले कर देते हैं और समझते हैं कि नहीं जी तालीम और इल्म तो सबसे बड़ी अहम चीज है और हमारा दीन जो है वो तो इल्म हासिल करने का हुक्म देता है और ये करता है वो करता है। तो चलो जी, छोटे बच्चों को भी जो है ऐसे बाहर में डाल करके हम बड़ा खुश हो रहे होते हैं, अपने आपको बड़ा जो है ना वो तीसमार खान समझ रहे होते हैं दीनी तौर पर भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चों को बुरे माहौल के हवाले करके और जो है ना मतलब दुआ तो वैसे नहीं मांगते हैं, लेकिन सो कॉल्ड के भी नहीं, नहीं मैं दुआएं मांग लूंगा बस सब ठीक रहेगा, ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, ठीक है? तो इस वजह से जो भाई बस बुरे माहौल में जाते हैं तो फिर यानी फिर तो पर क्या क्या बात करें फिर उसके ऊपर। बहरहाल, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे बरगुजीदा बंदों में से हैं, लफ्ज मुखलसीन इस जगह बेफतह लाम मुखलस की जमा है, मुखलसीन मुखलस लाम के ऊपर जबर है जिसके मानी मुंतखब के हैं, जिसको के मुंतखब कर लिया गया हो, ठीक है, या मुंतखब कर लिया गया हो तो उसको मुंतखब कहते हैं, और अरबी में अरबी का ही लफ्ज, वैसे मुंतखब भी अरबी का ही लफ्ज है, लेकिन मुखलस जिसको खालिस कर लिया, मुराद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन बंदों में से हैं जिनको खुद अल्लाह ताला ने, हक ताला ने अपने कारे रिसालत और इस्लाह खल्क के लिए इंतखाब फरमाया है। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजती पहरा होता है कि वो किसी बुराई में मुब्तला ना हो सकें। खुद शैतान ने भी अपने बयान में इसका इकरार किया कि अल्लाह के मुंतखब बंदों पर उसका बस नहीं चलता। चलिए, ठीक है, अल्लाह के मुंतखब बंदों पर उसका बस नहीं चलता, उसने कहा यानी शैतान ने कहा, फबिइज्जतिका, कि आपकी इज्जत की कसम है, लअुग्वियन्नहुम अजमाइन, मैं जरूर बिल जरूर इन सब के सब को गुमराह कर। सोचें जरा, शैतान ने भी कितने डबल ताकीद के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं जरूर बिल जरूर इन सब को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके उन बंदों को इनमें से जो कि मुखलस हैं, मुखलस, ठीक है, यानी कुरान मजीद में मुखलस का लफ्ज़ उमूमी तफसीर के अंदर बल्कि क़िरात के अंदर मुखलस का लफ्ज़ है, यानी कसम है तेरी कुव्वत, तेरी इज्जत कुव्वत की, कि मैं उन सब इंसानों यानी इन सब इंसानों को यानी आदम की औलादों को गुमराह करूंगा बजुज उन बंदों के जिनको आपने मुंतखब फरमा लिया है, ठीक है। एक और जगह इसी बात को अल्लाह ताला ने दूसरे अल्फाज में नकल किया, इन्ना इबादी, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इबादी, बेशक जो मेरे बंदे हैं ना, यानी मेरे खास बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, उनके ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। यानी वही जो मेरे मुखलस बंदे हैं, मेरे पसंदीदा बंदे हैं, खास बंदे हैं, उनके ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। और फरमाते हैं कि बास करातों में ये लफ्ज बिकसरे लाम यानी मुखलिसीन भी आया है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, हमने अपनी क्लासों में भी कभी कभी बयान किया है कि कुरान मजीद जो है वो 20 करातों में नाजिल हुआ, जिनमें से 10 कराते अभी भी उम्मत के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं, और हम तो सिर्फ 1 करात के अंदर कुरान मजीद पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबा करात का ना लफ्ज भी आपने सुना होगा, माशाल्लाह बाकायदा लोग सनद हासिल करते हैं सबा करात के, यानी 7 करातों के अंदर। तो उन करातों में इसी इसी किस्म के फर्क भी हैं। ठीक है, जैसे कि एक के अंदर जो है वो लाम जबर के साथ है, एक के अंदर लाम जो है वो जेर के साथ है, ये भी एक करात का भी का फर्क भी है। और मुखलिस के मानी ये हैं कि जो अल्लाह ताला की इबादत व फरमाबरदारी इखलास के साथ करे। ठीक है, इसमें किसी दुनियावी और नफसानी गर्ज व शहरत व शोहरत व जाह वगैरह का दखल ना हो। यानी अल्लाह की जो इबादत कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं कि मैं फिर जो है ना वो फिर मैं कोई खास पोजीशन मुझे मिल जाएगी, फिर मेरे जो है ना वो मेरी सारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, या ये कि जो है ना फिर मेरे सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, या मुझे जो है वो लोग इज्जत देना शुरू हो जाएंगे, इस किस्म का गर्ज उसके जहन में बिल्कुल भी ना हो। इस सूरत में मुराद इस आयत की ये होगी कि जो शख्स भी अपने अमल और इबादत में मुखलिस हो, यानी इखलास हो जिसके अमल और इबादत में, अल्लाह ताला गुनाहों से बचने में उसकी इमदाद फरमाते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी तफसील के साथ पीछे भी बात हो चुकी है। ठीक है, यानी दिस इज हाउ यू अर्न अल्लाहस हेल्प। ठीक है, इस आयत में हक ताला ने दो लफ्ज सू और फहशा के इस्तेमाल फरमाए हैं। सू के लफ्ज मानी बुराई के हैं और मुराद इससे सगीरा गुना है, और फहशा के मानी बेहयाई के हैं, इससे मुराद कबीरा गुना है। यानी बेहयाई जो है ना ये कबीरा गुना होने से, तो बेहयाई से तो फिर मुसलमान जो है ना वो दूर भागता है, और बेहयाई तो फिर एक जनरल भी टर्म है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्चुअली जो है वो खाली जिना का जो अमल है, बल्कि जिना के करीब करीब जो चीज चीजें लेके जाती हैं वो भी बेहयाई के अंदर शामिल होंगी। ठीक है, फोहश बातें भी इसके अंदर दाखिल है। ठीक है, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो तो फोहश कलाम से भी जो है ना वो अपने आप को रोक करके रखते हैं, और इस किस्म की यानी जोक्स भी नहीं करते। ठीक है, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कबीरा और सगीरा दोनों किस्म के गुनाहों से महफूज रखा। इससे ये भी वाज हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ कुरान में जिस हम यानी ख्याल को मंसूब किया है वो महज गैर इख्तियारी वसवसे के दर्जे का हम था, जो ना कबीरा गुनाह में दाखिल है ना सगीरा में, बल्कि मुआफ है। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस एक आयत की पूरी तफसीर जो है वो मारिफुल कुरान से अब हमने पढ़ के मुकम्मल कर ली है। किसी को कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो आप यहाँ पे चैट विंडो पे लिख लीजिए, जब तक ये आज इस एक आखिरी पॉइंट जो है ना वो क्योंकि दिल में अल्लाह ताला ने अभी डाला है, बल्कि क्लास से 2-4 मिनट पहले ही, तो वो बयान करना चाहेगा। वो ये कि देखें, आपने आपने मुलाहिजा फरमाया, देखा कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने नबियों की इस्मत के मौजू को प्रूफ करने के लिए कितनी तफसील बयान फरमाई है ना, और जो माजी के अकाबरीन थे उनकी भी सारी चीजें तकरीबन शायद यहाँ पे नकल कर दी उन्होंने, और अपनी तरफ से भी उर्दू जुबान के अंदर खूब सारे यानी अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करके इस बात को प्रूफ किया कि नबियों की जो है ना वो इस्मत के ऊपर कोई कोई आँच ना आए, किसी के जहन में ख्याल पैदा ना होने पाए। ठीक है, और अगर किसी के जहन में कोई ख्याल पैदा हो रहा है, शैतान डाल रहा है, इंसानी शैतान डाल रहे हैं या जिन्नी जिन शैतान डाल रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाए उसका ये डाउट, बिल्कुल क्लियर हो जाए। यही काम मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी किया था। याद है ना, हमने पता नहीं कौन सी सूरह इब्राहिम थी या कौन सी वाली सूरह थी जिसके अंदर क्या कहते हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाउज बिल्ला जो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस मुबारक के अंदर, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, किज़्ब इब्राहिम अलैहिस्सलाम था ना वो, क्या लफ्ज था, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ। ठीक है, जो हदीस मुबारक के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी फिर बहुत सारे बयान कज़बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, तो कितनी तफसील से जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उन कज़बात के लफ्ज को क्लियर किया था कि यहां पर वो गुनाह वाली झूठ मुराद ही नहीं है। और यानी नकली दलाइल और अकली दलाइल सब, यानी जिसको कहते हैं ना घर छोड़ करके आना, किसी चीज को घर तक लेकर के जाना, ये नहीं कि बाहर मार्केट में छोड़ जाना भी चले जाना घर, एक होता है आप किसी को घर छोड़ करके आए, यानी पूरा काम करें। तो इस्मत अंबिया के ऊपर कितना ज्यादा तफसील से इस बात को, तो देखें इससे एक एक उसूल भी हमारे सामने आता है। वो उसूल क्या है कि इस्मत अंबिया ये बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है, क्योंकि अगर नबी की इस्मत के ऊपर आंच आ जाए तो फिर तो वही की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती, है ना। तो बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है, इसकी हिफाजत के ऊपर कितनी मेहनत फरमाई, ठीक है ना। ये बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब जब कभी ईमान की हिफाजत की बात आती है, फिर उसके ऊपर हम समझाते हैं कि भाई ईमान है क्या, ईमान अकायद से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो अगर बुनियादी अकायद में से कोई एक अकीदा भी जो है वो गलत हो जाए तो इंसान काफिर हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर ना नए लोग जो होते हैं वो यही सवाल करते हैं कि फिर हम अपने अकायद की कैसे हिफाजत करें, ठीक है ना। तो क्या करें कि जिससे कि हमारे अकायद की हिफाजत हो जाए, हमारी औलाद की अकायद की हिफाजत हो जाए। तो हम उनको फिर क्या समझाते हैं कि अकायद की हिफाजत करने का ये तरीका नहीं है कि आप कोई चेकलिस्ट बनाएं अकायद की, ठीक है ना। चेकलिस्ट समझते हैं ना, जिसमें आप लिस्ट डाउन करें, ये अकीदा है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर जो है ना वो अपने जहन में दौड़ाएं कि अच्छा मेरा ये अकीदा इसके मुताबिक है तो उसको टिक कर दें, फिर अच्छा ये अकीदा भी जो है वो मेरा सही है तो फिर उसको टिक कर दें, फिर उसको भी टिक कर दें। ये सब चेकलिस्ट में आप टिक टिक करते हैं, और कोई चीज आपकी अगर गलत है तो उसको आप क्रॉस कर दें। नहीं, अकीदों की हिफाजत ऐसे नहीं की जाती, ऐसे आप कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। तो फिर कैसे अकायद की हिफाजत की जाए, अकायद की हिफाजत यानी ईमान की हिफाजत जो कि बेस्ड ऑन अकायद है, कैसे की जाए, इन्हीं उलमा के साथ जुड़ करके रहने से। क्योंकि ये जो उलमाए कराम है ना, उलमाए रब्बानी जीन, ठीक है ना, ये इनका काम ही होता है कि अकायद की हिफाजत की जाए, और जो इनके साथ जुड़ करके रहते हैं ना तो उनकी इनके वास्ते से फिर अकायद की हिफाजत होती है। क्योंकि एक तो ये अकायद के ऊपर हर वक्त बात करते रहते हैं, तो सुनने वाला जो है वो अगर किसी गलत फहमी में मुब्तला हो भी रहा हो उसकी इसलाह हो जाती है। और अगर इन्होंने किसी स्पेसिफिक अकायद के बारे में बात नहीं भी करी, लेकिन जो इनके साथ जुड़ करके रहा हुआ है, यानी ऐसा ताल्लुक है कि वो पूछता भी है इनसे, राइट, इनसे जो है वो बात भी करता है, इनसे सवाल भी करता है और इनसे जवाब भी लेता है, तो अगर उसके जहन जहन में कोई भी ऐसी चीज आएगी ना, अल्लाह ताला उसके दिल में ये बात डालेंगे कि यू बेटर एस्क, बेहतर है कि तुम पूछ लो इस बात को, इससे पहले कि तुम यूट्यूब के किसी वीडियो के ऊपर यकीन करके बैठ जाओ, या किसी ने तुम्हें जो है वीडियो भेज दी थी, तुम्हें सुनना तुम्हारे दिमाग में कुछ जो है वो इस किस्म का नासूर पैदा हो रहा है। नहीं, पहले पूछ लो अपने उस्ताद साहब से, अपने शेख साहब से पूछ लो, ये अल्लाह की तरफ से होगा। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने अपने बुरहान के जरिए से हिफाजत फरमाई ना, तो जो शख्स उलमाए रब्बानीयीन से जुड़ करके रहता है, अल्लाह उसके दिल में डालेंगे नो यू बेटर एस्क, तो वो पूछेगा उसकी इसलाह हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अकायद की हिफाजत होती है, और यही वाहिद जरिया है अकायद की हिफाजत का, क्योंकि उलमाए रब्बानीयीन के सामने जो है वो सबसे अहम चीज ईमान होती है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं, अमाल भी बाद में आते हैं, अमाल की प्रायोरिटी ईमान के बहुत बाद में आती है, ठीक है। तो भाई फितने दज्जाल आप सुनते ही रहते हैं, दज्जाल के फितने का दौर है, और फितने दज्जाल जो है ईमान का फितना है, तो भाई ईमान की हिफाजत के लिए ये चीज जो है ना वो हमारे लिए लाजम है, हम इसका बहुत एहतमाम करें, और हम उन लोगों को ना सुना करें, ना सुना करें। अब देखें अजीब हाल है, अजीब हाल है, जिनसे हमारा ताल्लुक है ना, यानी जिनसे हम पूछ सकते हैं, उनके तो हम आधे घंटे के कोई बयान नहीं सुनेंगे, लेकिन YouTube के ऊपर फलाने दोस्त ने भेज दिया, दो दो घंटे की टॉक्स YouTube के ऊपर से सुन लेते हैं, किसकी सुन लेते हैं, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जिससे हम कोई सवाल नहीं पूछ सकते, जिससे हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते। फलाने मुफ्ती साहब है, चाहे चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो कोई 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 वो सियासी जमात के इंचार्ज हों, चाहे वो किसी दीनी जद्दोजहद के यानी सरखेल बने हुए हों, राइट? आपने उनकी 2 घंटे की टॉक जो है वो सुन ली है, आप उससे कुछ क्लेरिफाई करवा सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं जो उसने कहा है? अच्छा, इसका आपका एक्चुअली मतलब क्या था ये बात कहने से? क्यों कही आपने ये वाली बात? ये क्या वाकई ऐसी है जैसे कि मैं समझ रहा हूं आपकी इस बात को? ये तो आप उससे नहीं क्लियर कर सकते। अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, ये इवन आपके मुल्क में बैठा हुआ है, लेकिन आप उससे राबता तो नहीं कर सकते। उसके तो हम 2-2, 3-3 घंटे के बयान सुन लेते हैं, और जिससे हम पूछ सकते हैं उनकी जो है ना, वो हम 10 मिनट की बात भी जो है वो सही तरीके से नहीं सुनते, और आधा 1 घंटे की बात तो हम कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज का। क्यों हम ये ऐसा करते हैं? ये शैतान हमसे करवाता है, ये शैतान हमसे करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरीके से जो है ना, ये अकायद के फसाद में मुबतला हो जाएगा, अकीदे के फसाद में बड़ी आसानी से शैतान इस तरीके से मुबतला कर सकता है, और ये जो है ना, वो कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि ये तो पूछ ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो भाई ये बड़ी अहम तरीन बात है, ईमान नहीं है तो फिर क्या रहा फिर हमारे पास ना? तो इन बातों को हमें तवज्जो सुनना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।